लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि समाज से उन्हें सुरक्षा मिले और उनकी पीड़ाओं पर ध्यान दिया जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, कोई भी प्रतिज्ञा मानव के जीवन में किसी के प्रति एक तरह के समर्पण की बात को बयां करती है। हम अपनी प्रतिज्ञा के फलस्वरूप किसी को अपनी ओर से एक आश्वासन देते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि वह व्यक्ति किसी खास बात को लेकर हमारे ऊपर पूर्ण रूपेण विश्वास और भरोसा करे। अतः हमारी प्रतिज्ञा व्यक्ति के प्रति हमारे प्रेम को घोषित करती है, जिस पर हम हर संभव खरा उतरने की कोशिश करते हैं। इस भांति किसी के प्रति प्रतिज्ञा करना हमारी ओर से व्यक्ति विशेष के लिए वचन देने अर्थात वचनबद्धता को दिखलाती है, जिसे हम उसकी अच्छाई और भलाई हेतु अपने निष्ठा में हर संभव पूरा करने की कोशिश करते हैं। श्रोताओ, चालीसा का प्रथम रविवार हमें ईश्वर द्वारा मानव के लिए की गई प्रतिज्ञा को देखने और उसके अर्थ पर चिंतन करने का आह्वान करता है। जीवनदाता ईश्वर ने हमें न केवल जीवन दिया है, वरन वे हम प्रत्येक जन से व्यक्तिगत रूप में प्रतिज्ञा करते हैं कि वे हमारे जीवन में हमारे साथ रहेंगे और हमें अपने आशीष और कृपा दानों से भर देंगे, क्योंकि वे हमें शर्तहीन प्रेम करते हैं। आइए हम चालीसा काल के प्रथम रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए सुसमाचार पाठ का श्रवण करते हुए अपने में इस बात की थाह लें कि अपने जीवन के किस मोड़ पर हमने ईश्वरीय प्रेम प्रतिज्ञा का एहसास किया है। क्या हम उनकी अनंत प्रतिज्ञा को पहचानते हैं, जिसके फलस्वरूप हम अपने जीवन को उनकी आशीष और कृपाओं से भरा हुआ पाते हैं? क्या उनके अतुल्य प्रेम की अनुभूति में हमने अपनी ओर से उन्हें कुछ प्रतिज्ञाएं की हैं, जो हमारे जीवन को उनकी इच्छा अनुसार जीते हुए सारी मानवता के लिए अर्थपूर्ण बनाता है?
इसके बाद आत्मा ईसा को निर्जन प्रदेश ले गया। वे 40 दिन वहाँ रहे और शैतान ने उनकी परीक्षा ली। वे बनैले पशुओं के साथ रहते थे और स्वर्गदूत उनकी सेवा परिचर्या करते थे। योहन के गिरफ्तार हो जाने के बाद ईसा गलीलिया आए और यह कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते रहे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो।
श्रोताओ, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें चालीसा की इस पुण्य अवधि में यीशु के साथ निर्जन प्रदेश अर्थात एकांत में समय व्यतीत करने हेतु प्रेरित करे, जिससे हम उनके दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान पर चिंतन करते हुए अपने जीवन में उनकी आशीष और कृपा दानों को गहराई से अनुभव कर सकें। उत्पत्ति ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए नूह के समय जल प्रलय के उपरांत याहवे द्वारा की गई प्रतिज्ञा की चर्चा करता है। याहवे बादलों में इंद्रधनुष को निशानी स्वरूप प्रकट करते हुए अपनी सारी सृष्टि से यही प्रतिज्ञा करते हैं कि वे जल प्रलय से पुनः अपनी सृष्टि को उजाड़ नहीं बनाएंगे। उत्पत्ति ग्रंथ में नूह के समय का जल प्रलय हमें इस बात का वृतांत प्रस्तुत करता है कि सृष्टि में बुराई भरने के कारण यहवे उसे परिशुद्ध करने का निश्चय करते हैं। वे सारी बुराई को खत्म करते हुए दुनिया की पुनः एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। यह हमारे लिए मृत्यु और पुनरुत्थान की सत्यता को प्रस्तुत करता है। वे जो ईश्वर की दृष्टि में नेक और पाक हृदयी हैं, वे उनकी महिमा और पुनरुत्थान के दर्शन करते हुए स्वर्ग राज्य के अनंत आनंद में सहभागी होंगे। वहीं जो ईश्वर की नजरों में दुष्ट, पापी और अहंकारी हैं, उनका सर्वनाश होगा। श्रोताओ, संत पेत्रुस के पहले पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ नूह के समय हुए प्रलय को बपतिस्मा की निशानी घोषित करता है। जल प्रलय का जल जिस भांति सृष्टि में व्याप्त सारी चीजों को नष्ट कर एक नई सृष्टि को जन्म देता है, ठीक उसी भांति बपतिस्मा का जल हमारे जीवन में व्याप्त आदि पाप के कलंक से हमें मुक्त कर ईश्वर की कलीसिया का एक नया सदस्य बनाता है। अपने बपतिस्मा के द्वारा हम यीशु ख्रीस्त की मृत्यु और उनके पुनरुत्थान अर्थात नए जीवन के सहभागी बनते हैं। प्राचीन व्यवस्थान के प्रलय और यीशु के क्रूस मरण तथा पुनरुत्थान में हम इस भांति एक समानता को पाते हैं। दोनों ही घटनाओं के द्वारा संसार के पापों का विनाश होता और एक नए जीवन की शुरुआत होती है। नूह के जल प्रलय में केवल 8 ही व्यक्ति बचाए जाते हैं, लेकिन यीशु में बपतिस्मा प्राप्त करने के द्वारा सारी मानव जाति बचाई जाती है। यीशु का बपतिस्मा इस तरह हम सबों के लिए मुक्ति का स्रोत है, जो हमें जीवन के पापमय बंधनों से स्वतंत्र करता है, क्योंकि इसके द्वारा हमारे शरीर के मैल की सफाई नहीं होती वरन अंतःकरण का शुद्धिकरण होता है। यीशु के बपतिस्मा में हमें पवित्र आत्मा का पान कराया जाता है, जहां हम अपने को विभिन्न वरदानों से विभूषित पाते हैं, जो हमें ईश्वर का निवास स्थल बनाता और हम अपने को ईश्वर के कार्यों हेतु समर्पित करते हैं। श्रोताओ, आज का सुसमाचार हमें ईश्वरीय आत्मा और उसकी प्रेरणा का जिक्र करता है, जहां हम यीशु को बपतिस्मा ग्रहण करने के उपरांत निर्जन प्रदेश ले चलने की बात सुनते हैं, जहां उनकी परीक्षा ली गई। संत मार्कुस का सुसमाचार यद्यपि हमें यीशु की ली गई परीक्षाओं का पूर्ण वृतांत प्रस्तुत नहीं करता है। अपने बपतिस्मा में पवित्र आत्मा से ओतप्रोत यीशु अपने पिता के कार्यों को पूरा करने हेतु निर्जन प्रदेश में एक तैयारी करते हैं। यह एक आध्यात्मिक तैयारी की अवधि कही जा सकती है, जहां यीशु त्याग, तपस्या और अपने प्रार्थनामय जीवन के द्वारा पिता के संग अपने को पूर्ण रूपेण संयुक्त करते हैं। आत्मा से प्रेरित निर्जन प्रदेश में बनैले जीव जंतुओं के बीच यीशु का जीवन हमें इस बात की ओर भी ध्यान इंगित कराता है कि वे अपने को चुनी हुई प्रजा इसराइली जनता अपने लोगों के जीवन अनुभवों से संयुक्त करते हैं। इस भांति यीशु ख्रिस्त सभी रूपों में अपने को मानव जीवन का अंग बना लेते हैं। यह हमें पुनः मानव जाति के प्रति उनके अतुल्य प्रेम को दिखलाता है। अतः यह सत्य है कि एक हाड़ मांस वाले व्यक्ति स्वरूप सही अर्थ में उनकी परीक्षा ली गई और वे शैतान द्वारा ली गई परीक्षाओं में खरा उतरते हैं। अपने जीवन में परीक्षाओं का सामना करते हुए वे हमें जीवन की इस हकीकत से वाकिफ कराते हैं कि जीवन में सदैव परीक्षाएं आएंगी, साथ ही हम उनकी तरह ही अपने जीवन की सारी परीक्षाओं में सफलता भी प्राप्त करेंगे, बशर्ते कि हम आत्मा से मिले वरदानों के अनुरूप ईश्वर के वचनों में विश्वास करते हुए ईश्वर के प्रति निष्ठावान बने रहते हों। यीशु की परीक्षाओं में हम इस बात को पाते हैं कि उन्होंने ईश्वर के वचनों और संहिता की शिक्षा में विश्वास किया। धर्म ग्रंथ के वचनों और संहिता पर विश्वास के कारण वे अपने पिता के प्रति आज्ञाकारी निष्ठावान पुत्र बने रहे। उन्होंने बपतिस्मा में मिले आत्मा के वरदानों को अपने में संजोए रखा। वे सत्य और मार्गदर्शक पवित्र आत्मा के प्रति खुले रहे, जिसके फलस्वरूप उन्होंने शैतान की परीक्षाओं पर विजय प्राप्त की। आइए हम माता मरियम से निवेदन करें कि चालीसा के इस समय में वे हमें बपतिस्मा में मिले पवित्र आत्मा के वरदानों को जानने और उन्हें अपने में संजो कर रखने हेतु मदद करें, जिससे हम भी उनकी सहायता से अपने जीवन की परीक्षाओं में खरा उतर सकें।
आशीष मुझको दे प्रभु, तेरा प्रकाश मुझ में हो प्रभु, तेरा ही तेज मुझ में हो प्रभु, तेरा प्रकाश मुझ में हो प्रभु, तेरा ही तेज मुझ में हो प्रभु। मसीह प्यार का तेरा प्यार मुझ में हो, सत्य तू प्रभु तेरी सच्चाई मुझ में हो, तू है मसीह प्यार का।
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। सेंट पापा फ्रांसिस ने शनिवार को दूसरे टेलीथॉन आयोजित किए जाने से पहले रिस्पीरा पेरू पहल के आयोजकों को एक संदेश भेजा, जिसका उद्देश्य है देश में कोविड-19 महामारी का सामना करने हेतु अधिक ऑक्सीजन संयंत्र तथा मेडिकल उपकरण दान करना। यह पहल कोरोना वायरस महामारी से लड़ने हेतु मदद देने और संसाधन जुटाने हेतु आयोजित की गई है। वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पेत्रो परोलिन द्वारा संत पापा फ्रांसिस की ओर से प्रेषित संदेश में उन्होंने स्नेह के साथ एकात्मकता पहल के आयोजकों एवं सहयोगियों का अभिवादन किया है, जो कोविड-19 से पीड़ित लोगों एवं उनके परिवारों की मदद करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। पेरू के कार्तिक धर्मदर्श सम्मेलन के अध्यक्ष त्रिजूलो के महाधर्मदर्श मिग्वेल काप्रिजोस को प्रेषित संदेश में संत पापा ने रेस्पीरा पेरू पहल के आयोजकों को प्रोत्साहन दिया है कि वे ईश्वर की कोमलता को देख बाल अधिक मानवीय और भाईचारापूर्ण समाज के निर्माण द्वारा हर एक व्यक्ति तक पहुंचाएं, जिससे कोई भी व्यक्ति बहिष्कृत या वंचित महसूस न करे। संत पापा का यह संदेश देश में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से लड़ने में मदद करने के लिए अधिक ऑक्सीजन संयंत्र और आपातकालीन चिकित्सा उपकरण दान करने के उद्देश्य से आयोजित दूसरे रेस्पीरा पेरू टेलीथॉन के पहले भेजा गया है। संदेश के अंत में संत पापा ने अपने लिए प्रार्थना का आग्रह किया है तथा रोगियों के स्वास्थ्य माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हुए उनके परिवारों एवं प्रियजनों पर अपना प्रेरित आशीर्वाद प्रदान किया है। संत पापा फ्रांसिस ने 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के अवसर पर प्रेषित ट्वीट संदेश में ईश्वर से प्रार्थना की है कि प्रभु हमारे ईश्वर हमें कृपा दे कि हम सुसमाचार को जी सकें और हर एक मानव व्यक्ति में ख्रिस्त को पहचान सकें, जिससे कि हम परित्यक्त लोगों की पीड़ा एवं हमारी दुनिया में भुला दिए गए लोगों में उन्हें क्रूसित एवं नई शुरुआत करने वाले सभी भाई बहनों में उन्हें पुनर्जीवित देख सकें। अपने दूसरे ट्वीट संदेश में उन्होंने चालीसा काल की याद दिलाते हुए कहा है, इस चालीसा काल में ख्रिस्त में प्रकट सच्चाई को स्वीकार करने और जीने का अर्थ है सबसे पहले ईश्वर के वचन के लिए अपना हृदय द्वार खोलना, जिसको कलीसिया पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करती है। संत पापा फ्रांसिस ने बृहस्पतिवार को परमधम पीठ के लिए 2021 का बजट पास किया। कोविड-19 महामारी के द्वारा उत्पन्न भारी आर्थिक प्रभाव के बावजूद संत पापा की प्राथमिकता इस विकट परिस्थिति में यही है कि रोजगार सुरक्षा जारी रहे। पोप फ्रांसिस ने बृहस्पतिवार शाम को परमधम पीठ के लिए 2021 के बजट को हरी झंडी दिखाई, जिसका प्रस्ताव वित्त विभाग के सचिवालय ने रखा था और अर्थव्यवस्था के लिए परमधम पीठ समिति ने मंगलवार को मंजूरी दी थी। इस वर्ष 260.4 मिलियन यूरो के कुल राजस्व तथा 310.1 मिलियन यूरो के कुल खर्च के साथ परमधम पीठ 49.7 मिलियन यूरो के घाटे की उम्मीद कर रहा है। वेटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि स्वीकृत बजट कोविड-19 महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकट से बुरी तरह प्रभावित है।
संत पापा फ्रांसिस ने शुक्रवार को वाटिकन में उत्तरी इतालवी शहर जेनेवा के संपोरिया फुटबॉल टीम से मुलाकात की। संत पापा ने कहा, सामान्य रूप से खेल और विशेष रूप से फुटबॉल जीवन परिपक्वता और पवित्रता का मार्ग हो सकता है। उन्होंने याद किया कि अपने दम पर कभी नहीं, लेकिन हमेशा एक टीम के रूप में आगे बढ़ना है। संत पापा ने खेल के संबंध में दो प्रमुख विशेषताओं की चर्चा की। संत पापा ने कहा, सब कुछ एक टीम के रूप में किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ जीत वह है जो एक टीम के रूप में आती है। उन्होंने कहा, एक फुटबॉल खिलाड़ी जो केवल खुद को ध्यान में रखते हुए खेलता है, अन्य खिलाड़ियों की परवाह किए बिना गेंद से चिपका रहता है। इसके बजाय हमें हमेशा एक टीम के रूप में काम करना चाहिए। संत पापा ने कहा, दूसरा बिंदु यह है कि उन्हें खेल के प्रति शौक जुनून को कम नहीं होने देना चाहिए। खेल एक ऐसी गतिविधि है जिसमें शामिल होना और चीजों को करना चाहत से आता है, यह महत्वपूर्ण है। आप हमेशा शौक से खेल का प्रदर्शन करें। सिंपोरिया के अध्यक्ष मासिमो फेरेरो और लिगुरियन टीम के कोच क्लाउडियो रानियेरी ने संत पापा को वाटिकन में उनका स्वागत करने के लिए धन्यवाद दिया। टीम ने संत पापा को बैठक के स्मारक पेन के साथ पापा फ्रांचेस्को लिखी हुई एक संपोरिया जर्सी भेंट की। उधर बगदाद के खलदेई कैथोलिक प्राधिधर्माध्यक्ष कार्डिनल लुइस राफेल साको ने धर्म प्रांत की वेबसाइट पर एक आधिकारिक बयान में कहा कि संत पापा फ्रांसिस देश के सभी समस्याओं को हल करने के लिए इराक नहीं आ रहे हैं और न ही प्रवासी ख्रिस्तियों को वापस लाने या उनकी जब्त संपत्ति को वापस पाने का कार्य करना उनका कर्तव्य है। यह इराकी सरकार की जिम्मेदारियों में से एक है कि वे उनकी वापसी के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ बनाएं। वे सोशल मीडिया पर संत पापा की यात्रा की आलोचना करने वालों को जवाब दे रहे थे। वाटिकन ने 7 दिसंबर 2020 को घोषणा की कि संत पापा फ्रांसिस 5 से 8 मार्च तक इराक की प्रेरितिक यात्रा करेंगे। मध्य पूर्वी देश में संत पापा की यह पहली यात्रा होगी। संत पापा बगदाद, उर, मोसुल, काराकोश के मैदानी इलाकों का दौरा करेंगे। अपने बयान में प्राधिधर्माध्यक्ष साको ने कहा कि यह यात्रा एक ऐतिहासिक और असामान्य यात्रा है। जिस परिवेश में यह देश जी रहा है, हम संत पापा की यात्रा को एक आशीर्वाद मानते हैं। इस यात्रा से हम आशा करते हैं कि देश को पुनर्जीवित करने के लिए सुलह और एकीकरण के कदम लिए जाएंगे। प्राधिधर्माध्यक्ष ने जोर देकर कहा, संत पापा सभी समस्याओं को हल करने के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि अपनी एकजुटता व्यक्त करने और इराकियों के साथ खड़े होने एवं प्रेम, भाईचारे, मेल मिलाप, सहिष्णुता, शांति, जीवन का सम्मान, विविधता और बहुलवाद का संदेश देने आ रहे हैं। इराकी राष्ट्रपति बरहम सलीह ने जुलाई 2019 में संत पापा फ्रांसिस को आधिकारिक तौर पर इराक की यात्रा के लिए आमंत्रित किया था। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।